50, ایک دفعہ جس کو قریباً 21 برس کا عرصہ ہوا ہے مجھ کو یہ الہام ہوا، اشکر نعمتی رائتا خدیجتی انک الیوم لذو حظ عظیم۔ ترجمہ، میری نعمت کا شکر کر، تو نے میری خدیجہ کو پایا، آج تو ایک حظ عظیم کا مالک ہے۔ براہین احمدیہ صفحہ 558۔ اور اس زمانے کے قریب ہی یہ بھی الہام ہوا تھا، بکرم و سیبن، یعنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ یہ مؤخر ذکر الہام مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کو بھی سنا دیا گیا تھا، لیکن الہام مذکورہ بالا جس میں خدیجہ کے پانے کا وعدہ ہے، براہین احمدیہ کے صفحہ 558 میں درج ہو کر نہ صرف محمد حسین بلکہ لاکھوں انسانوں میں اشاعت پا چکا تھا۔ ہاں، شیخ محمد حسین مذکور ایڈیٹر اشاعت السنہ کو سب سے زیادہ اس پر اطلاع ہے، کیونکہ اس نے براہین احمدیہ کے چاروں حصوں کا ریویو لکھا تھا، اور اس کو خوب معلوم تھا کہ ان صفات کی ایک باقرہ بیوی کا وعدہ دیا گیا ہے جو خدیجہ کی اولاد میں سے یعنی سید ہوگی، جیسا کہ الہام موصوفہ بالا میں آیا ہے کہ تو میرا شکر کر، اس لیے کہ تو نے خدیجہ کو پایا، یعنی تو خدیجہ کی اولاد کو پائے گا۔ اسی کی تائید میں وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 492 حاشیہ دوم اور صفحہ 496 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے: اردت ان استخلف فخلقت آدما، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم اسکن انتی و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 492 و 496۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اے آدم، جس سے نئے سرے اسلام کے نوروں کی بنیاد پڑے گی، یعنی ایک عظیم و شان تجدید ہوگی اور برکات ظاہر ہوں گے، اور فیض آوج کے زمانے کی غلطیاں اور غلط تفسیریں کاٹ کر پھینک دی جائیں گی، اور ایک نئی جماعت اسلام کی حمایت کے لیے اس سے قائم ہوگی۔ تو ماں اپنی زوجہ کے بہشت میں داخل ہو، اسی لحاظ سے الہام میں میرا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ نئے معارف اور نئے حقائق اور نئی زمین اور نئے آسمان اور نئے نشان ہوں گے، اور نیز یہ کہ مجھ سے ایک نیا خاندان شروع ہوگا۔ سو اس نے ایک نئے خاندان کے لیے مجھے اس الہام میں ایک نئی بیوی کا وعدہ دیا، اور اس الہام میں اشارہ کیا کہ وہ تیرے لیے مبارک ہوگی اور تو اس کے لیے مبارک ہوگا، اور مریم کی طرح اس سے تجھے پاک اولاد دی جائے گی۔ حاشیہ، براہین احمدیہ کے صفحہ 496 میں یہ الہام درج ہے، یعنی الہام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اور ایسا ہی الہام اشکر نعمتی رائتا خدیجتی، براہین احمدیہ کے صفحہ 558 میں مندرج ہے۔ چونکہ یہ دونوں پیش گوئیاں حالات موجودہ کے لحاظ سے بالکل دور از قیاس تھیں اور ان کے ساتھ کوئی تفہیم نہ تھی، اس لیے میں ان کی تشریح اور تفصیل واقعی طور پر نہ کر سکا۔ ناچار براہین احمدیہ میں ایک حیرت زدہ عالم میں مختصر طور پر معنی بیان کر دیے گئے۔ منہ، تو جیسا کہ وعدہ دیا گیا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا، اور خدا تعالیٰ نے چار لڑکوں کا بذریعہ الہام فروری 1886 عیسوی میں وعدہ دیا، اور پھر ہر ایک پسر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں وعدہ دیا، اور جیسا کہ میں پہلے اسے لکھ چکا ہوں، یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے کہ اس نے ان ہر چار لڑکوں کے پیدا ہونے کا اس وقت وعدہ دیا جبکہ ان میں سے ایک بھی موجود نہ تھا۔ حاشیہ، بعض نادان دل کے اندھے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یکم فروری 1886 عیسوی کی پیش گوئی میں جو ایک پسرے موعود کا وعدہ تھا، وہ وعدہ جیسا کہ ظاہر کیا گیا تھا پورا نہیں ہوا، کیونکہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا تھا، وہ 16 مہینے کا ہو کر فوت ہو گیا، حالانکہ 7 اگست 1887 عیسوی کے اشتہار میں اسی کو بابرکت موعود ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسی قسم کی خباثت ہے جو یہودیوں کے خمیر میں تھی، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے یہ نکلا تھا کہ مسیح موت کے زمانے میں ایسے بھی لوگ مسلمانوں میں سے ہوں گے کہ جو یہودیوں کی صفت اختیار کر لیں گے، اور ان کا کام افتراء اور جعل سازی ہوگی۔ भला आओ अगर सच्चे हो तो पहले इसी का फैसला कर लो कि हमने कब और किस वक्त और किस इश्तिहार में ये शाया किया था कि इस बीवी से पहले लड़का ही होगा और वो लड़का वही बाबरकत मऊद होगा जिसका 1 फरवरी 1886 के इश्तिहार में वादा दिया गया था। इश्तिहार मजकूर में तो ये लफ्ज़ भी नहीं है कि वो बाबरकत मऊद ज़रूर पहला ही लड़का होगा, बल्कि इसकी सिफत में इश्तिहार मजकूर में ये लिखा है कि वो 3 को 4 करने वाला होगा, जिससे यही समझा जाता है कि वो चौथा लड़का होगा या चौथा बच्चा होगा। मगर पहले बशीर के वक्त कोई 3 मौजूद ना थे जिनको वो 4 करता। हाँ, हमने अपने इज्तिहाद से ज़नी तौर पर ये ख्याल ज़रूर किया था कि शायद यही लड़का मुबारक मऊद हो, लेकिन अगर इस नादान मोतरिज़ के एतराज़ की बुनियाद सिर्फ हमारा ही ख्याल है जो इल्हाम के सरचश्मे से नहीं बल्कि सिर्फ हमारे ही गौर व फिक्र का नतीजा है तो सख्त जाए अफसोस है, क्योंकि वो इस ख्याल की इशात से इस्लाम की ऊंची चोटी से ऐसा नीचे को गिरेगा कि सिर्फ कुफर और इर्तदाद तक ही नहीं थमेगा बल्कि नीचे को लुढ़कता लुढ़कता दहरियत के नहायत अमीक गड़े में अपने बदबख्त वजूद को डाल देगा। वजह यह कि इज्तिहादी गलतियाँ क्या पेशगोइयों के समझने और उनका मज़दाक ठहराने में और क्या दूसरी तदबीरों और कामों में हर एक नबी और रसूल से हुई थी, और एक भी नबी इनसे बाहर नहीं, को इन पर कायम नहीं रखा गया। अब जबकि इज्तिहादी गलती हर एक नबी और रसूल से भी हुई है तो हम बतरीके तनज़ुल कहते हैं कि अगर हमसे कोई इज्तिहादी गलती हुई भी तो वो सुन्नत अंबिया है, और इस बिना पर हमला करना सरासर हमाकत और नादानी है। हाँ, अगर हमारा कोई ऐसा इल्हाम पेश कर सकते हो जिसका ये मज़मून हो कि खुदा ताला कहता है कि ज़रूर पहले ही हमल से वो बाबरकत और आसमानी मऊद पैदा हो जाएगा, और या ये कि दूसरे हमल में पैदा होगा और बचपन में नहीं मरेगा, तो तुम्हें खुदा ताला की कसम है कि वो इल्हाम पेश करो तासया रुए शवद हर के दरोगश बाशद, और 7 अगस्त 1887 का इश्तिहार दयानतदार के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बाबरकत और आसमानी मऊद की खुदा ताला की तरफ से कोई पेशगोई नहीं है, और मुजर्रद मऊद की पेशगोइयाँ इस जगह बतौर दलील के काम नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक लड़का जो मेरे घर में इस बीवी से पैदा हुआ मऊद है। सबूत तो ये देना चाहिए कि वो लड़का जो 3 को 4 करने वाला हो और मजहरे जलाले इलाही हो, जो दुनिया को राह रास्त पर लाने वाला होगा, उसी के आने की खबर बहैसियत इलाम इलाही के इश्तिहार 7 अगस्त 1887 में दी गई है। बस अगर ये सच है कि इस इश्तिहार में उस मुबारक मऊद की खबर इल्हाम दी गई है तो एक मजलिस में मुझे बुलाओ और उस इल्हाम को पेश करो। आप ज़रा सोच लें कि क्या ख़यानतों से यहूदियों ने कोई बेहतरी देखी, ता आपको भी किसी बेहतरी की उम्मीद हो। अव्वल बाशरम इंसान बनना चाहिए और बाानसाफ मर्द बनना चाहिए, और फिर सीधे दिल से मेरे इल्हाम के अल्फाज में गौर करना चाहिए। अगर मैंने किसी इश्तिहार में कोई कलिमा इज्तिहादी तौर पर लिखा हो और अपना ख्याल जाहिर किया हो तो वो हुज्जत नहीं हो सकता। अगर इस पर ज़िद करोगे तो तुम्हें तमाम नबियों से इनकार करना पड़ेगा, और बुजुज मुर्तद और दहरिया हो जाने के कहीं तुम्हारा ठिकाना न होगा, क्योंकि इस बात से कोई नबी भी बाहर नहीं कि कभी इज्तिहादी तौर पर उससे गलती ना हुई हो। अगर ये बात तुम्हारे नज़दीक तहकीर और तकजीब और मज़ेका की जगह है तो अपने उलमा से ही पूछ लो कि तुम पर क्या फतवा हो सकता है। मैं आप लोगों की इन बेहुदा नुक्ता चीनियों से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि आप उस याज खाई से खुदा ताला की एक पेशगोई को पूरा करते हैं, और वो ये है, दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल न किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई ज़ाहिर कर देगा। मिन हो 51। मियाँ अब्दुल्ला सनोरी, जो गौसगढ़ इलाका पटियाला में पटवारी है, एक मरतबा उसको एक काम पेश आया जिसके होने के लिए उसने हर तरह की तदबीरें भी कीं, और बाज़ वजू के पैदा होने से उसको इस काम के हो जाने की उम्मीद भी हो गई, और फिर मेरी तरफ भी इल्तिजा की कि ता उसके हक़ में दुआ की जाए। तो जब मैंने उसके बारे में तवज्जो की तो बिला तवक्कुफ़ ये इल्हाम हुआ, ए बसा आरज़ू के खाक शुदा, तब मैंने उसको कह दिया कि ये काम हरगिज़ नहीं होगा, और आखिरकार ऐसा ही ज़हूर में आया, और कुछ ऐसे मवाने आ पड़े कि वो काम होता होता रह गया। इस पेशगोई का गवाह खुद मियाँ अब्दुल्ला सनोरी और शेख हामिद अली साकिन थे ग़ुलाम नबी है, जिसका कई मरतबा इस रिसाले में ज़िक्र आया है। ये दोनों साहिब हल्फन ये गवाही दे सकते हैं, मगर हल्फ हस्ब नमूना नंबर 2 के होगी। 52 जिस ज़माने में सैयद मोहम्मद हसन खान साहिब वज़ीर आज़म रियासत पटियाला थे, उनकी वफात से चंद साल पहले मुझे लुधियाना से पटियाला जाने का इत्तेफाक हुआ, और उस वक्त मेरे साथ शेख हामिद अली और शेख अब्दुलरहीम साकिन अम्बाला छावनी और फ़तेह खान नाम एक पठान था जो ज़िला होशियारपुर का बाशिंदा था। ये दोनों शख्स मौखर ज़िक्र मौलवियों के फतवा तकफीर के ज़माने में कसरत मुखालिफीन को देख कर मुखालिफ हो गए और अब तक मुखालिफ हैं। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब मैंने पटियाला की तरफ जाने का कसद किया तो खुदा ताला ने रात को मेरे पर यह जाहिर किया कि इस सफ़र में कुछ नुकसान होगा और कुछ हम गम पेश आएगा, और मैंने इस पेशगोई से जो खुदा ताला से मुझको मिली मजकूरा बाला हमराइयों को इतला दे दी और हम रवाना हुए। जब पटियाला में पहुँच कर और अपने ज़रूरी कामों से फरागत पाकर फिर वापस आने का इरादा किया तो असर की नमाज का वक्त था। मैंने नमाज पढ़ने के कसद से चोगा उतारा था वज़ू करूँ, और इस चोगे को सैयद मोहम्मद हसन खान वज़ीर रियासत पटियाला के खिदमतगार के हवाले किया, क्योंकि वज़ीर साहब माँ अपने बाज नौकरों के मेरे छोड़ने के लिए रेल पर आए थे, और उनके खिदमतगार ने मेरा चोगा अपने पास रखा और मुझे वज़ू कराया। जब टिकट लेने का वक्त हुआ तो मैंने अपने चोगे की जेब में हाथ डाला ता टिकट के लिए रुपया दूँ, क्योंकि मैंने 30 रुपये के करीब रुमाल में बांध कर जेब में रखे हुए थे। तब जेब में हाथ डालने के वक्त मालूम हुआ कि वो रुमाल माँ रुपये के कहीं गिर गया, गालिबन उसी वक्त गिरा जब के चोगा उतारा था। उस वक्त मुझे वो इल्हाम इलाही याद आया कि सफ़र में कुछ नुकसान होगा, मगर ये दूसरा फिक्रा इल्हाम का कि कुछ गम और हम पहुँचेगा। इसकी नस्बत उस वक्त मुझे 2 ख्याल आए, एक ये कि इस कदर रुपया ज़ाया होने से बिला शुबा बमक्तदाए बशरियत गम हुआ, और दूसरे मुझे ये ख्याल भी दिल में गुजरा कि जब वज़ीर साहब मौसूफ़ रेल पर मुझे लेने के लिए आए और उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया तो कई हज़ार आदमी मेरे देखने के लिए स्टेशन पर मौजूद था, जो करीब हो होकर मुसाफा करते और बाद हाथ चूमते थे। तब वज़ीर साहब ने जो शिया मज़हब थे रंजदा अल्फाज में बयान किया कि ये लोग वहशी अहमक क्या करते हैं, गोया उनकी नज़र में उन लोगों का इनकिसार से मिलना और इस कसरत से इस्तकबाल के लिए आना एक बेहुदा अमर था। तब मुझे उनका ये कलमा बाय से रंज हुआ, और मुझे अफसोस हुआ कि इनके दिमाग और दिल में उन लोगों की जो खुदा से मामूर होकर आते हैं सच्ची अजमत नहीं, और सिर्फ ज़ाहिरदारी के तौर पर एक गरोह कसीर के साथ चले आए हैं। सो मैंने रुपए के नुकसान के वक्त ये भी ख्याल किया कि ये रंज जो वज़ीर साहब के एक कलमे से मुझे पहुँचा था, इसी हद तक इस पेशगोई का मंशा ख़त्म हो गया, जिसके ये लफ्ज़ थे कि कुछ हम गम भी पेश आएगा। मगर ये मेरा ख्याल गलत था, क्योंकि इस सफ़र में हम गम का एक और हिस्सा बाकी था जो वापस होने के वक्त दोराह के स्टेशन पर पूरा हुआ। तफसील इसकी ये है कि जब हम दोराह के स्टेशन पर पहुँचे तो लुधियाना जहाँ हमने जाना था उस जगह से 10 कोस बाकी रह गया। रात करीबन 10 बजे गुजर गई थी, तब मेरे हमराही शेख अब्दुलरहीम ने एक अंग्रेज़ से पूछा कि क्या लुधियाना आ गया। उसने हंसी से या किसी और गर्ज से कहा कि आ गया, और हम इस बात के सुनने से सब के सब रेल पर से उतर आए। और जब हम उतर चुके और रेल रवाना हो गई तब हमें पता लगा कि ये दुराहा है, लुधियाना नहीं है, और वो ऐसी जगह थी कि बैठने के लिए भी चारपाई नहीं मिलती थी और ना खाने के लिए रोटी। तब हमें बहुत रंज और अफसोस और हमोगम हुआ कि हम गलती से बेठिकाना उतर आए, और साथ ही याद आया कि ज़रूर था कि ऐसा होता। तब सबके दिल सरूर और ख़ुशी से भर गए कि खुदा ताला का इल्हाम पूरा हुआ। इस वाक़या और निशान के गवाह शेख हामिद अली और शेख अब्दुलरहीम और फ़तेह खान हैं। अगरचे ये दोनों इन दिनों में अपनी बदकिस्मती से सख्त दुश्मन हैं, मगर चूँकि ये बयान बिल्कुल सच्चा है, इसलिए अगर इन दोनों को हल्फ दी जाए तो मुमकिन नहीं कि झूठ बोलें, मगर शर्त यह है कि हल्फ नमूना नंबर 2 के मुवाफिक होगी। अब देखो कि निशान इसे कहते हैं जिसमें ऐसे सख्त मुखालिफ गवाह ठहराए गए। अब किसी मुनसिफ और पाक दिल और बाहया इंसान का दिल और कॉन्शंस फतवा देगा कि ये निशान सही नहीं है, और अगर अब भी शक हो तो ऐसे शख्स को हजरत अहदियत जल्ला इस्महू की कसम है कि इनको बतर्ज मजकूरा वाला कस्में देकर दरियाफ्त करे और खुदा ताला से डरे اور سوچے کہ کیا اس قدر عظیم و شان نشانوں کا ایک ذخیرہ کذاب کی تائید میں خدا تعالیٰ دکھا سکتا ہے؟